دیکھیں گے کہ ایک ینگ اور شکتیشالی پاورفل ویکتی جو ہوتا ہے یوتھ, وہ کبھی بھی کھانے پینے کا اس کو پرہیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے, پتھر ہضم لکڑ ہضم ہی نیور بودرس. اور وہی آدمی جب میرے جیسا ہو جاتا ہے, اولڈ ایج میں آ جاتا ہے, تو اس کو 100 بیماریاں ہو جاتی ہیں. آپ جانتے ہیں بیماریاں گنانے کی ضرورت نہیں. پھر اس کو سوچنا پڑتا ہے یہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا. دنیا کی بہت ساری چیزیں تو اس کو بند کر دی جاتی ہیں, تھوڑی سی بچتی ہیں اس کے لیے. تب اس کو بتانا پڑتا ہے کہ تیرے میں پوٹاشیم کم ہے یا میگنیشیم کم ہے یا تجھے B12 لگانا ہے یا کیا کرنا. تو اسی پرکار سے یہ جو ہمارا وشے ہے یہ آج کے سندرب میں, تو سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ویکتی شروع سے بوڑھا نہیں ہوتا, پہلے تو جوانی ہوتا ہے نا. تو پہلا نیم یہ ہے, دا فرسٹ لا آف کریشن از کہ ایوری تھنگ از کریٹڈ نیو, نتھنگ کین بی کریٹڈ اولڈ. کوئی بھی چیز پرانی نہیں بنائی جا سکتی, کوئی ویکتی پرانا مکان نہیں بنا سکتا, نیا ہی بنتا ہے, پرانا ہو جاتا ہے. اسی طرح سے جو گاڈ آل مائٹی ہے اس کی یہ جو کریشن ہے دنیا, تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ نئی سے شروع ہوئی ہوگی یا پرانی سے. تو نئی سے شروع ہوتی ہے اور پھر وہ پرانی ہوتی جاتی ہے. اچھا, جب نئی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ تو آپ دیکھیں گے کہ نئی کریشن کا اگر ہم اچھی طرح سے سوچیں, آئیڈیل سچویشن کیا ہے کہ نئی دنیا میں جب یہ نئی بنی تھی, ہم لوگ بھی نئے تھے, آتمائیں نئی تھیں, تو ہر چیز ٹھیک سمے پر, ٹھیک ستھان پر اور ٹھیک طریقے سے ہوتی تھی. ایوری تھنگ ہیپنڈ ایٹ دا رائٹ ٹائم ایٹ دا رائٹ پلیس اینڈ ان دا رائٹ مینر. ٹھیک ہے, تو نیچرلی وہاں پر جو انسان کو چاہیے سکھ شانتی آنند پریم سب تھا. لیکن آپ جانتے ہیں نیا 9 دن پرانا 100, کیا کہتے ہیں 100 دن, اب تو 100 دن سے بھی اوپر ہو چکا ہے. تو آج کیا سچویشن ہے, آج کیا سچویشن ہو گئی, بالکل اس کا ڈائمیٹریکلی اپوزٹ وہ یہ ہو گئی ہے کہ آج کسی کو بھی کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. کہاں یہ تھا ہر چیز ٹھیک ستھان پر, ٹھیک سمے پر, ٹھیک ودھی سے ہوتی تھی, اور آج اینی تھنگ کین ہیپن ٹو اینی ون اینی ٹائم اینی ویئر. یہ دشا ہے. تو ایسی دشا میں انسان کو سوچنا پڑتا ہے یہ بھی پاورز کہاں گئی میری پاورز. تو آوشکتا پڑتی ہے جو ایک ہی شکتی جس کو ہم کہتے ہیں پاور, اس کو انالائز کرنے کی, اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے دیکھنے کی کہ کون سی پاور کیا کرتی ہے, کون سی پاور کیا کرتی. اگر آپ میرے سے پوچھیں تو دنیا کے اندر دو ہی مکھیہ شکتیاں ہیں, ایک کا نام ہے ستیہ اور دوسرا نام ہے پریم. ستیہ جو ہے جب وہ پریکٹیکل میں آتا ہے تو اس کو پریم کی آوشکتا پڑتی ہے. آپ غور سے سوچیں گے کہ پرماتما کو صرف دو چیزوں سے ایکویٹ کیا جاتا ہے, یعنی ہم کہتے ہیں لو از گاڈ اینڈ ٹروتھ از گاڈ, ان کو برابری دی جاتی ہے. گاڈ کی بہت ساری وشیشتائیں ہیں لیکن ٹروتھ میں نے نمبر ٹو اپلائیڈ ٹروتھ کہو, ٹیکنالوجی آف لائف کہو, وہ ہے پریم. تو ستیہ اور پریم یہ دو مکھ شکتیاں ہیں جس کے آدھار پر جیون چلتا ہے, اور جب ان کے اندر بگاڑ آ جاتا ہے तो फिर हम शक्तियों को, जैसे कोई डॉक्टर के पास जाता है, लेबोरेटरी में जाता है, उसको एनालाइज करते हैं। अब सत्य क्या है? सत्य इज दैट वॉज, दैट इज एंड दैट विल बी। जो चीज शाश्वत है, थी भी, है भी और होगी भी, उसको सत्य कहते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि सत्य पर बेस्ड जो भी चीज होगी वो उसका फाउंडेशन सत्य होगा, नहीं तो उसके अंदर भी बिगाड़ आ जाएगा। अब जब सत्य पर आधारित प्रेम था तो उसके पीछे वो असली प्रेम था, और जब सत्य बिगड़ जाता है, असत्य में हम चले जाते हैं, तो प्रेम भी बिगड़ जाता है। आज हमारा पैसे से प्यार है, पोस्ट से प्यार, वो वाला प्यार नहीं। इसलिए आपको बताया गया होगा कि बेसिक बात जिसके ऊपर सारी जिंदगी का आधार है वो ये सत्य है, जो सब ग्रंथों में भी लिखा हुआ है, भगवद गीता के चैप्टर 2 में शुरू ही होता है कि आप आत्मा है, आप आत्मा है, आप आत्मा है। आत्मा अनादि अविनाशी है, शाश्वत है, और आपकी बाकी चीजें सारी जो हैं वो आत्मा का रिसोर्स है। आत्मा को काम चलाने के लिए जो चीजें चाहिए वो है। पहला रिसोर्स आपका शरीर है, लेकिन ये हम ना भूलें, ये हमारा रिसोर्स है। लेकिन हो क्या गया है कि जो दिखता है और जो नहीं दिखता है, तो लोग दिखते को देखते देखते वही समझने लेते। आज इंसान पंखे को देखता है, ये नहीं जानता कि उसके पीछे बिजली भी होनी चाहिए, और इसलिए आप देखेंगे पंखे खूबसूरत बनते जा रहे हैं, बिजली करंट एरेंट होता जा रहा है, उसके लिए आपको स्टेबलाइजर ये वो लगाना पड़ता। तो दो बातें हो गई। अब आइए, पावर किस में है? पावर पंखे में है या बिजली में है? बिजली में है। तो पहली बात यह है कि जो भी हम शक्तियों का बातचीत करेंगे वो सारी शक्तियां आत्मा में है। अगर आत्मा किसी की समझ में ना आए तो हम कह सकते हैं मन में है। मन तो सबको समझ में आता है। आप यहां बैठे हैं, आप अपने घर जाइए, यहां बैठे बैठे तो मन से ही जाएंगे, ठीक है। अब हमने ये देखना है कि अगर हमारे मन में कोई भी प्रकार की ताकत है या कमजोरी है, तो बाकी सब चीजें उसी के अनुसार चलेंगी। किसी व्यक्ति को सारी दुनिया के शक्ति हथियार दे दीजिए, अगर उसका दिल कमजोर है तो हारेगा। इसीलिए कहा जाता है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो जिंदगी के अंदर उस मेन जो पावर थी उसको अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब किया गया है। तो आज हमको विषय दिया गया है 8 शक्तियां। अब 8 क्यों कहा गया है? क्योंकि हमारी जो सिंबल है भारत के अंदर दुर्गा देवी का, अष्टभुजाधारी दिखाते हैं। अच्छा, अब दुर्गा देवी को आप गौर से देखिए, सोचिए, उसको शक्ति की देवी माना जाता है। उसकी सवारी शेर पर है, ठीक है, और शेर आप जानते हैं, शेर किसी से नहीं डरता और शेर से सब डरते हैं। शेर किंग, लायन इज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। अब कोई व्यक्ति शेर के भी ऊपर चढ़ जाए तो क्या हुआ? शक्तिशाली हो गया। अच्छा, गौर से सोचिए कि जिसको हम राजा का सिंहासन कहते हैं, हमारे राजा साहब बैठे हैं यहां, राजा का जिसको हम सिंहासन कहते हैं, उसको जरा एनालाइज करिए। सिंह आसन, शेर के ऊपर बैठने वाला, उसको कहते हैं सिंहासन। शेर के ऊपर कौन बैठेगा? जिस जो ऑल पावरफुल होगा वही बैठेगा ना। तो राजा पहले सॉवरेन होते थे, पूरी शक्ति होती थी। तो इसलिए दुर्गा सिंबल है शक्ति का, और उसके 8 भुजा दिखाई जाती हैं। तो जीवन के अंदर हम उन शक्तियों को 8 को ही ले लेते हैं और एक एक को देखते हैं उसका भाव अर्थ क्या है। पहली शक्ति का नाम है पावर टू विड्रॉ। अब मुझे इसकी हिंदी तो नहीं आएगी बिल्कुल हूबहू, हमें सिखाया इंग्लिश में गया है, आप समझ गए, पावर टू विड्रॉ। अब आप देखिए इंसान को कुदरती तौर पे नेचर ने पावर टू विड्रॉ दिया है कि बेटा रात को सो जाना, ठीक है, दिन में काम करना, रात को सो जाना, ताकि तुम नॉर्मल और रिफ्रेश होकर अगला दिन शुरू करो, ठीक है। इसी प्रकार से कोई भी बिजी लोग होते हैं वो अपना एक फार्म हाउस बना लेते हैं कुछ के, भाई जब हम जरा थक जाएं तो आराम के लिए चले जाएं। आप बताइए कि हमारी पावर टू विड्रॉ नींद नेचुरल और नॉर्मल है आजकल, है? एक गरीब आदमी भी पत्थर पे सो जाता है, सारे जानवर वक्त पे सो जाते हैं, और हम समझदार इंसान हमें नींद ही नहीं आती। नींद आने के लिए हम कितने उपाय करते हैं। अच्छा, नींद पूरी होने पर आंख खुलनी चाहिए, सुबह हमारी आंख नहीं खुलती, सोते जागते हम हैं लेकिन नॉर्मल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, हमारी पावर टू विड्रॉ डिस्टर्ब हो गई। अब क्योंकि ये नॉर्मल पावर डिस्टर्ब हो गई है तो सारी जितनी हमारी एक्टिविटी है उसमें वो डिस्टर्बेंस रिफ्लेक्ट करती है। आपने अभिमन्यु की कहानी सुनी होगी, शास्त्रों में लिखा है कि अभिमन्यु को चक्रव्यूह के अंदर जाना तो आता था, बाहर निकलना नहीं आता, तो मारा गया, बिकॉज ही कुड नॉट विड्रॉ। अच्छा, अब आप देखिए अभिमन्यु का मतलब क्या होता है, अभिमान, वहां से निकला ईगो, कि व्यक्ति का ईगो उसको ऐसा फंसा देता है कि वो खुशी में भी फंस जाता है, अपनी सफलता में फंस जाता है, सफलता उसको मिलने लग जाए तो बाहर नहीं आना चाहता, उसको यही पता नहीं लगता कि मुझे कहां तक जाना है और कहां तक आना। अब अगर ये पावर टू विड्रॉ नहीं होगी तो मन की शक्ति समझ लीजिए, क्योंकि शक्तिशाली मन वो होता है जो हम उसको जब चाहें जहां चाहें लगा सके, और जितनी देर लगाना चाहें वहां लगाए रख सके, और फिर वापस भी ला सके। इसको शक्तिशाली मन कहते हैं। वरना आप मन को लगाना चाहें तो लगे नहीं, हटाना चाहें तो हटे नहीं, तो काहे का मन हुआ। आजकल ऐसा ही है कि व्यक्ति ऐसा कुछ उसमें फंस जाता है भंवर में कि वो जब लग जाता है मन तो उसको ये भी नहीं याद रहता मुझे उसको हटाना है, वक्त हो गया, बाथरूम में होगा, पता नहीं कहां कहां पहुंच जाएगा, फिर सोचेगा अरे भी काफी टाइम हो गया, इस तरह हिसाब हो गया। देयरफॉर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत आवश्यक है कि हम अपनी पावर टू विड्रॉ को प्रैक्टिस करें कि हमें किस जगह कहां तक जाना है और वापस भी आना है। गोताखोर भी नीचे जाता है तो उसके साथ अपना ध्यान रखता है कि मुझे वापस खींचने का प्रबंध होना चाहिए, तो इसको कहते हैं पावर टू विड्रॉ। अच्छा, दूसरी ले लीजिए, अब उसको कहते हैं पावर टू पैकअप, यानी अपना बोरी बिस्तर तैयार रखो। इसका क्या मतलब है, हम सब ने अपना बोरी बिस्तर तैयार रखा हुआ है, जब सोचते हैं जब वक्त आएगा तैयार कर लेंगे। आप किसी व्यक्ति का जो दुनिया से चले जाता है उसका जब लिखा जाता है तो क्या लिखा जाता है, डेट ऑफ बर्थ और दूसरा डेट ऑफ डेथ। अच्छा, अब डेट ऑफ बर्थ तो हमारी हो गई है, ठीक है, हाउ अबाउट द सेकंड, जो फिल इन द ब्लैंक करना है वो कब होनी है, डू वी नो, वी डू नॉट नो। देयरफॉर या तो किसी को पक्का पता हो कि फलाने दिन होनी है, विच मीन्स हमें हर वक्त पैकअप रखना पड़ेगा, क्योंकि जब आए तो हमें कोई अफसोस ना हो कि मेरे फ्रिज में संतरे रह गए मैंने खाए नहीं है, हो सकता है ना। अब आप सोचिए दुनिया के अंदर कोई भी मुसाफिर जर्नी करता है तो उसका स्टेशन आए तो खुश होता है या उदास होता है, बल्कि डिले हो जाए तो तड़पता है, स्टेशन आने से पहले ही वो बिल्कुल दरवाजे पे पहुंच जाता है। अच्छा, और हमारी जिंदगी भी तो जर्नी है, इसका स्टेशन आए तो हम खुशी से उतरना चाहते हैं क्या, क्या ख्याल है, या कहते हैं मुझे अपोलो हॉस्पिटल ले चलो, मुझे बचा लो, मैंने नहीं उतरना। इसका मतलब क्या हुआ कि पावर टू बैकअप है नहीं। अब आप देखेंगे कि पावर टू जो विड्रॉल की पावर है उससे आप वापस आके किसी दूसरी जगह अपने समय को लगा सकते हैं, जैसे किसी को गियर को न्यूट्रल करके आप चेंज कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर हमारे पास पावर टू पैकअप टू क्लोज नहीं है तो फिर क्या होगा, हम यही सोचते रहेंगे। वैसे हम कहते हैं डू नॉट पुट ऑफ टिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे, जो कल करना सो आज कर ले, जो आज करना सो अब कर ले। फिर भी सोचते हैं, शास्त्रों में लिखा हुआ कि सबसे बड़ा आश्चर्य यही है, हर व्यक्ति जानता है मैंने शरीर छोड़ना है, लेकिन वो समझता है सारी दुनिया छोड़ देगी, मैंने नहीं छोड़ना। ये आश्चर्य है, ये यक्ष से प्रश्न पूछा गया था। इसलिए हमें तैयारी रखनी है ताकि हमें कोई अफसोस ना रह जाए, कोई रिपेंटेंस ना रह जाए, कोई हमारी इच्छा ना रह जाए। और इससे कनेक्टेड बात क्या है, जिसको हम कहते हैं डिजायर्स एंड एक्सपेक्टेशंस। अब हमारे यहां बड़ी अच्छी कहावत है, नेकी कर और उसको क्या कर, कुएं में डाल दे, रहा जो नजदीक चीज मिले वहां डाल दे। क्यों कहा गया, क्योंकि अगर हमने नेकी करी और उससे एक्सपेक्टेशन कर लिया, माँ बाप ने कहा हमने बच्चों को पढ़ाया मेहनत करके, ये बच्चे भी बुढ़ापे में हमारा ख्याल रखेंगे एंड सो ऑन, और वो नहीं रख पाते, चाहे उनकी मजबूरी है या लापरवाही है, तो हमें दुख होगा ना। तो जिंदगी में हमने दुख लेना है या दुख से बचना है, कम से कम बचना है। देयरफॉर एक्सपेक्टेशन के एंड में दुख होता है, इसलिए एक्सपेक्टेशन करना ही नहीं चाहिए। क्योंकि आपको जो मिलना है, हर ट्रक के पीछे लिखा होता है मिलेगा मुकद्दर है समय से पहले, और कुछ लिखा होता है ना, वो हम फॉलो नहीं करते। इसलिए आप समझ लीजिए कि जिसको जो मिलना है उसको मिलना ही है, उसको कोई रोक नहीं सकता, और जिसको नहीं मिलना उसको कोई दिला नहीं सकता। देयरफॉर वाई एक्सपेक्ट, तो ये हमारी गलती है। और हम पैदा, अच्छा डिजायर होती है अपने अंदर से, और आप डिजायर ही शुरू कर दें कि सारे लोग विदेश जाके हैं मैं भी चला जाऊं, हो गई प्रॉब्लम शुरू। अगर आपकी फुलफिल हो गई तो भी आपको सेकंड बारी पैदा हो जाएगी, नहीं हुई तो तकलीफ, अगर जाना होगा तो मैं चले ही जाऊंगा नहीं। इसलिए इसको दबा के रखेंगे, आपको नेचुरली बाय डायनेमिक्स ऑफ एक्शन आपको जो मिलना मिलेगा। इसलिए गोरी बिस्तर तैयार रखें। हमें कहा जाता है थिंक एवरी डे टू बी योर लास्ट डे, कंसिडर एवरी मोमेंट टू बी योर लास्ट मोमेंट, ताकि जो कुछ आपने करना कर ले। ठीक है, समय थोड़ा है, मैं जल्दी जल्दी करता हूं। और तीसरी जो है उसको कहा जाता है पावर टू एकोमोडेट, धारण करने की शक्ति। अच्छा, अब आप देखिए कि धारण करने की शक्ति, जितनी नदियां हैं दुनिया के अंदर उनका क्या लक्ष्य होता है, हर नदी क्या चाहती है, उसका एक ही लक्ष्य होता है कि चाहे रास्ते में रुकावट आए, पहाड़ी आए, डैम बना दो, मैंने जाके समुन्द्र से मिलना और अपना अस्तित्व भी खो देना। समुन्द्र से मिलने के बाद गंगा गंगा नहीं रहती, जमुना जमुना, वाई वाई सो, ये समुन्द्र एकोमोडेट करता है। उसके अंदर कुछ डाल दीजिए, रॉक डाल दीजिए, पत्थर डाल दीजिए, क्यों करता है, ये समुन्द्र नीचे सतह पर होता है। कल कोई बता रहे थे, महाराज बता रहे थे कि 5000 कितने फुट पर माउंट आबू है। आप सोचिए एवरीथिंग ऊपर से नीचे तक चलती है ना चीज, वाटर भी और राजसत्ता भी, यथा राजा तथा प्रजा कहते हैं, कभी यथा प्रजा तथा राजा नहीं कहा गया। तो ह्यूमिलिटी जो है वो व्यक्ति को अकोमोडेशन की पावर सिखाती है, और जो व्यक्ति हर चीज को अकोमोडेट कर सकता है वो व्यक्ति सफल होता है। उसके पीछे एक अंडरस्टैंडिंग है। हम क्या करते हैं, जो हमें पसंद आता है उसको हम अकोमोडेट करते हैं, जो नहीं आता हम कहते हैं इसको नहीं अकोमोडेट करना। अब आप सोचिए रामलीला हो रही है, रावण बड़ा जोर जोर से चिल्लाता है, इतना भयानक उसका चेहरा होता है, हा? बच्चे रो पड़ते हैं। कोई जाके उसके पास कहे, रावण जी आप क्यों इतना भयानक चेहरा बनाया है, आप लक्ष्मण की तरह जरा भोले भाले बन जाइए तो। मान लो रावण मान जाए तो रामलीला चलेगी? देयरफोर हमें ये समझ लेना चाहिए कि दुनिया में हर चीज, अगर सांप भी बना तो किसी कायदे से बना। इसलिए हमें हर चीज को समझ करके उसको समझना चाहिए, पार्ट ऑफ द ड्रामा है। अगर हम ये समझ जाएंगे तो हमें जो चीज हमें अच्छी नहीं लगती उसको एकोमोडेट करने से बहुत फर्क पड़ता है। समय नहीं है, अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद आती है पावर टू डिस्क्रिमिनेट, यानी पहचान, किसी चीज को जानना कि ये चीज ठीक है या गलत है, असली है या नकली है। ठीक है, अब आप देखिए पावर टू डिस्क्रिमिनेट के पीछे क्या है, पेशेंस। अगर हमारे अंदर धैर्यता है तो धैर्यता में हम चीज को क्लियर देख सकते हैं, और अगर हमारे अंदर धैर्यता नहीं है, हम हरीड हैं, 10 तरह के ख्यालात, जैसे ट्रैफिक जैम होता है, इधर उधर चल रहे हैं, तो हम ठीक तरह डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। तो हमें चाहिए पेशेंस। आजकल किस चीज की सबसे ज्यादा कमी है, हाँ, धैर्यता की। हम लोग शांति शांति मांगते हैं। अगर मैं बिल्कुल चुप होकर बैठ जाऊं, 5 मिनट में आप डिस्टर्ब हो जाएंगे कि बोलता क्यों नहीं, अब बोलने में आप पीसफुल रहेंगे, क्योंकि धैर्यता तो है नहीं। एक आदमी को कहा गया, भगवान को याद कर तुम्हें धैर्यता मिलेगी, तो थोड़ी देर बैठा रहा, फिर कहता है, गॉड गिव मी पेशेंस बट प्लीज हरी अप। ये हाल हमारा है, समझा आपने। तो हम देखेंगे 10 मंजिली बिल्डिंग है तो 7 चॉकलेट कोका कोला की शॉप होगी लिफ्ट के पास, ये बंदा डिस्टर्ब ना हो जाए कुछ करता रहे। तो ये अगर धैर्यता नहीं है तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तो नतीजा क्या होगा, हम अपने वैल्यूएबल टाइम को, वैल्यूएबल लाइफ को, हमारे डिसीजंस में मिक्सचर हो जाएगा। हम प्रेशियस, लेस प्रेशियस और वर्थलेस को मिक्स कर देंगे। अब क्या हो रहा है, एक चीज है विजडम। अगर आप डिस्क्रिमिनेट करते हैं तो आपके विजडम आएगी, अदरवाइज यू विल हैव लॉट ऑफ नॉलेज, लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अननेसेसरी, तो मिक्स हो गया ना उस। तो आपको हीरा लेना है, ये सिपियां लेनी है। देयरफोर इसमें चाहिए क्लैरिटी। इसलिए कहा जाता है कि क्लीन माइंड होगा आपका, शीशा साफ होगा तो आपको डिस्क्रिमिनेशन आएगी, है ना। एक आदमी देख रहा था कि वो सामने धुंध है, फिर उसने अपना शीशा साफ किया तो लगा कि डस्ट तो मेरे शीशे पर है। इसलिए आप नोट कर लीजिए कि डिस्क्रिमिनेशन पावर हमें डायलेमा से बचाती है, दुविधा से बचाती है, और हमें निर्णय करने में मदद करती है। जब तक आपकी डिस्क्रिमिनेशन पावर नहीं होगी, आप द्वंद में होंगे, करूं ना करूं, करूं ना करूं, जाऊं तो मुश्किल, ना जाऊं तो मुश्किल, ये हो जाएगा। अब आप आ जाइए जजमेंट पे, निर्णय शक्ति। ये तो बहुत ही वंडरफुल बात है। हम सब समझते हैं हमारी अकल सही है, ठीक है ना। कहा जाता है अपनी अकल और दूसरे की दौलत अच्छी लगे। अगर हमारी अकल सही है तो फिर हमें दुख क्यों होता है, हम रॉन्ग डिसीजन को लेते हैं, हम तनाव में क्या आते, तो कुछ गड़बड़ तो है। अब आप देखिए हमारा क्लासिक स्टेटमेंट ये है कि मैं ये करना तो चाहता हूं पर मेरे से होता नहीं। ठीक है, कोई कहे भाई साहब सुबह 4 बजे योग में आना, आप कहेंगे हाँ। अगले दिन आप कहेंगे मैं करना तो चाहता था पर मेरे से हुआ नहीं। इसका ऑपोजिट, मैं करना तो नहीं चाहता था मेरे से हो गया, मैं अगली कार से टक्कर तो नहीं लगानी चाहता था पर लग गई। अच्छा, ये हमारा क्लासिक स्टेटमेंट है, लेकिन हम अपनी जजमेंट पावर को दूसरे पर यूज करते हैं, उसको ये करना चाहिए वो क्यों नहीं करता, और उसको ये नहीं करना चाहिए वो क्यों करता, उसके हम जज हैं और अपने लिए हम अपोलोजेटिक हैं, मैं करना तो चाहता हूं मेरे से, इसका मतलब क्या हुआ। एक और खास बात नोट करने की, आप हर व्यक्ति समझता कि बुद्धि बहुत अच्छी चीज है, जिसके पास बुद्धि होती है इंटेलेक्चुअल बुद्धिवान वो बहुत अच्छा व्यक्ति होता है। गौर से सोचिए आप अपनी बुद्धि को कब यूज करते हैं, जब आप डाउट में होते हैं। आप अपनी बुद्धि को तभी यूज करते हैं जब आप डाउट में होते हैं। अपने घर जाने के लिए आपको बुद्धि यूज नहीं करनी पड़ती, कोई दूसरा रास्ता बताए मेरे घर आओ तो चार बार बुद्धि यूज करेंगे। और बुद्धि का एक और मजा है, हर आदमी समझता है मेरी बुद्धि ठीक है, जैसे आंख में कैटरेक्ट होता है ना, तो जो भी जिसको जितना भी दिखता है वो सोचता है मैं तो देख रहा हूं ना, वो तो डॉक्टर बताएगा कि तेरे ब्लैक हिस्सा कितना हो चुका है। अब आप गौर से देखिए, एक व्यक्ति किलिंग को मारने को बहुत बड़ा पाप समझता है, ठीक है, वो समझता है कि अहिंसा परमो धर्म है। अच्छा, एक चोर है वो जेल में जाने को तैयार है मारने को तैयार नहीं है, लेकिन किसी दिन मजबूरी के कारण वो पुलिस से बचने के लिए जिसकी चोरी करने के तो उसको मार डालता है। अब उसमें फर्क आ जाएगा, वो मारने के लिए तैयार हो जाएगा, ही बिकम्स ए किलर। ओके, एक पक्का कंफर्म्ड किलर हो जाता है, उसके लिए मारना कोई मुश्किल नहीं है, किलर्स का गैंग ज्वाइन करके पब्लिक में गोली भी चलाता है। फिर भी उस क्राउड में उसका अंकल है तो क्या कहेगा, अरे भाई मेरे अंकल को बचाना। आप देखेंगे उसकी बुद्धि यहां तक तो मारी जा चुकी कि आदमी को नहीं मारना पर मेरे अंकल को नहीं मारना। देयरफॉर हम अपनी बुद्धि के कभी ट्रस्ट नहीं कर सकते कि हमारी बुद्धि सालिम है, उतनी ही सालिम है जितना उसमें मतलब प्ले आ चुका उसके बाद थोड़ा सा हिस्सा चलती है। तभी करके हमारे फैसले अच्छे, हर एक व्यक्ति के निर्णय अच्छे होने के बाद भी वो ना तो प्रेम में रहता है ना सुख में रहता है ना शांति में रहता है। एक खास बात है, क्या प्रेम और नफरत इकट्ठे रह सकते हैं? क्या दिन और रात इकट्ठे रह सकते हैं? आपके ख्याल में अंधेरा और रोशनी इकट्ठे रह सकते हैं? अगर एक बाल्टी अमृत में आप एक ड्रॉप जहर डाल देंगे तो अमृत रहेगा? तो हमको एक और गलत फहमी है, हम सोचते हैं कि सारी दुनिया से तो हमारी दोस्ती है, केवल एक व्यक्ति है जिससे मुझे घृणा है, चाहे वो मेरी मदर इन लॉ हो, सॉरी है, चाहे वो मेरा कोई भी हो, अच्छा मेरा पड़ोसी हो, मेरा कलीग हो। अब आप सोचिए एक से नफरत हो गई तो आप देखेंगे कि नफरत ही नफरत ज्यादा उसका ही ध्यान आएगा। आप किसी से बोलना छोड़ दो, आप उससे सबसे ज्यादा बोल सोचेंगे उसके बारे में, खुद भी नहीं सोचेगा। देयरफॉर हमें ये रखना चाहिए, ये चीजें अगर शांति है तो पूरी शांति होनी चाहिए, ये नहीं कि शांति में 5% शांति मिल जाए, नहीं चलेगा। प्रेम है तो पूरा प्रेम, भगवान को कहते प्रेम का सागर, इसका मतलब वो किसी से घृणा नहीं करता। अगर कोई ऐसी चीज आ भी जाए जो नफरत के योग्य तो भी वो नफरत नहीं करता, क्योंकि प्रेम का सागर है। एक गुलाब का फूल असली वाला वो अपनी नेचुरल नेचर नहीं छोड़ता, चाहे आप उसको गुलदस्ते में डाल दें, मंदिर में डाल दें, डस्टबिन में भी डाल देंगे तो ये नहीं कहेगा कि ये तो डस्टबिन है मैं खुशबू नहीं देता। हर चीज, बर्फ है बर्फ भी पिघलते पिघलते पिघल जाएगी, अपनी ठंड नहीं छोड़ेगी। हम क्या करते हैं, सिलेक्टिव हैं, इसको देना है इसको नहीं देना है, तो नतीजा क्या, हमारे अंदर तो दोनों चीजें पड़ी है ना, इसलिए उसका असर नहीं होता, गर्म सर्द हो जाते हैं। देयरफॉर ये भी आप याद रखिए कि जजमेंट पावर रिक्वायर्स क्लैरिटी ऑफ इंटेलेक्ट, और इंटेलेक्ट के अंदर अगर हमारे 5 तरह की खराबियां हैं जो आपको बताई गई होंगी, अगर हमारे इंटेलेक्ट में ईगो है, स्वार्थ है, इंटेलेक्ट में अटैचमेंट है, कुछ भी चीज है, तो फिर हमारी इंटेलेक्ट ही काम नहीं करती। अब आप अटैचमेंट को ही ले लो, लाइफ इज ए जर्नी, हम सब जानते हैं, कुछ दिन का खेल है, और हमें भगवान ने एक पर्टिकुलर रोल दिया है। अच्छा एक्टर होता है, एक्टर को रोल मिलता है, एक्टर नोज ही हैज ए डिफरेंट आइडेंटिटी, उसका घर अलग है, उसकी पर्सनैलिटी अलग है, उसको रोल मिलता है। अच्छा एक्टर को आप राजा बना दें या एक्टर को कुली बना दें, ठीक है, और उसको उस रोल के लिए जो पेमेंट मिलेगा बराबर होगा या राजा के लिए ज्यादा मिलेगा कुली के लिए कम होगा, क्या ख्याल है? उसका जो एप्रिसिएशन होगा वो रोल के अनुसार होगा या राजा के लिए ज्यादा होगा कुली के लिए कम होगा? तो एक्टर कैन प्ले हिज रोल, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको कुछ भी बना दो क्योंकि उसको पता है कि दिस इज माई रोल। है हमारा भी रोल और हम उसमें अटैच हो जाते हैं। डॉक्टर हॉस्पिटल में जाओ, डॉक्टर कहते हैं जी हम पेशेंट के रिलेटिव से बड़े तंग हैं, इतना पेशेंट हमें तंग नहीं करता, इसको ये करो इसको ये करो। हम खुद भी नर्स को क्यों रखते हैं कि नर्स कोई मरीज मर जाए तो रोती नहीं है, डिस्चार्ज हो जाए तो लड्डू नहीं बांटती, वो अपनी ड्यूटी करती है क्योंकि अपना रोल करती है। और हम क्या करते हैं, हम अपने रोल के साथ जुड़ जाते हैं। यहां तक अगर आप किसी भी मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट देखें, अपने लिए नहीं सिर्फ मैं समझाने के लिए कह रहा हूं, अब मैट्रिमोनियल उसमें क्या लिखा होता है, जो आजकल के मोस्ट पेइंग प्रोफेशन है, वांटेड सो एंड सो इंजीनियर, आईटी एक्सपर्ट, व्हाटएवर, एक में भी नहीं लिखा होता वांटेड ए गुड ह्यूमन बीइंग। कभी सुना आपने, पढ़ा है? और रिश्ता हो रहा है लाइफ लॉन्ग का। तो ये हमारी हालत हो चुकी है, वी आइडेंटिफाई अवर सेल्फ विद अवर रोल, और जबकि रोल इज पार्ट गिवन टू मी एट द प्रेजेंट, इट वॉज नॉट देयर, इट विल नॉट बी देयर, इट विल चेंज। पहले मैं बच्चा था, फिर मैं भाई बन गया, फिर मैं बाप बन गया, फिर मैं दादा बन गया, एंड अगेन नेक्स्ट आई एम गोइंग टू बी समथिंग। खास बात यह है कि दो किनारे, जब ये सारी जितना ड्रामा है जो कुछ भी दुनिया में, ये एटर्नल है। चाहे आप पेड़ और बीज देख लें, चाहे आप इंसान को देख लें। अब मैं बच्चा बनना चाहूं तो क्या मैं पिछला वाला बच्चा बन सकता हूं या नेक्स्ट वाला? क्यों जी, टाइम ऑलवेज मूव फॉरवर्ड। हम एक चीज की जानते हैं कि इसके ये प्रोसेस है, इसके बाद ये होगा, आई कैन बिकम ए बेबी ओनली द नेक्स्ट वन। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम पुरानी चीज को नया करने की कोशिश कर रहे हैं। सारी दुनिया यही कर रही है, पुरानी दुनिया ठीक हो जाए, ये नहीं सोचते कि इसकी अपनी कल्मिनेशन आएगी तो नहीं आएगी। देयरफॉर वो जो था पावर टू पैक अप एंड पावर टू पुट ए फुल स्टॉप, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जिंदगी में, आप इंग्लिश भाषा देखिए, एवरी सेंटेंस क्लोजेज विद ए फुल स्टॉप एंड स्टार्ट विद ए कैपिटल लेटर। उसके बीच में क्या होता है, एक कुंडा आता है जिसको हम कहते हैं क्रूकेड साइन, क्वेश्चन मार्क, आपको प्रश्न पैदा हो जाता है। जब वो पूरा हो जाए नीचे उसकी बिंदी होती है, एक्सक्लेमेशन आता है, ये क्या हुआ, वो पूरा हो जाए तो बिंदी होती है। तो हम अगर हम अपने हर रोल के बाद बिंदी लगा दें, जिसको कहते हैं पास्ट इज पास्ट, तो ठीक हो जाएगा। अब आगे चलिए, पावर टू फेस, सामना करने की शक्ति। आज बहुत सारे लोगों में सामना करने की शक्ति नहीं है। आपका बच्चा पड़ोसी के बच्चे से लड़के आएगा, अपने बच्चे को पीटना शुरू कर देंगे, चल अंदर, क्योंकि सामना करने की शक्ति क्यों नहीं है कि जिस चीज में लॉस हो उसमें व्यक्ति सोचता है मेरा लॉस बच जाए। लेकिन अगर आप अपने आप को आत्मा मानेंगे तो आत्मा का कोई नुकसान नहीं होता। जो सीड के अंदर कंटेन्ड हो गया, सारे पेड़ को खत्म कर दो, सीड तो उसको ले जाएगा। हमको सामना करने की शक्ति के लिए भी अपने आप को एटर्नल एंटिटी सोल, जिसके अंदर सब कुछ भरा हुआ है, वो जीवन में चलेंगे तो ठीक होगा। उसके बाद एक पावर आती है, वो आती है पावर टू टॉलरेट। हमको स्कूल में पढ़ाते थे कि जब बहुत बड़ा तूफान आया तो बड़े बड़े पेड़ उखड़ गए और छोटे पौधे जो थे वो हिलते जुलते रहे, वो बच गए। तो टॉलरेंस जो है, इसका कनेक्शन है ह्यूमिलिटी से। अगर किसी के पास ईगो होगा छुपा हुआ किसी भी प्रकार का, उसको हर्ट होगा। और किसी के पास ह्यूमिलिटी होगी, वो उसको पता भी नहीं लगेगा अब सागर के अंदर आप कुछ भी डाल दो उसको पता भी नहीं लगता, लेकिन धरती पे डालोगे उछलेगा। तो इसलिए टॉलरेंस पावर आपको बहुत मदद करती है, क्योंकि आप हर चीज को सहन करके इजी रहते हैं। फायर जो है, आग, आग क्या करती है? आग हर चीज को साफ करके खुद वैसी की वैसी रहती है। पानी क्या करता है? वो खुद मैला हो जाता है, दूसरे को साफ करता है। तो हमें जीवन में पानी को आप प्यार कहें और अग्नि को आप शक्ति कहें। तो अगर आप हमें यूज शक्ति को करना है, लेकिन उस शक्ति को यूज करने के लिए थोड़ा सा पानी चाहिए। जैसे आप चावल बनाते हैं, सीधे आग पे नहीं रखते, उतना ही पानी डालते हैं कि वो गल जाए। तो जिंदगी के अंदर प्रेम का प्रयोग सत्य की पालना के लिए करना, और सबसे इम्पोर्टेंट है पावर टू कोऑपरेट। अब आप कहेंगे, कई लोग समझते हैं मुझे इससे कोऑपरेट करना चाहिए, इससे नहीं करना चाहिए, मेरे तरफ का या नहीं। अब मैं आपको तीन चार स्पिरिचुअल लॉज बताता हूं। पहला आध्यात्मिक नियम है कि इस दुनिया में कोई भी चीज अपने लिए नहीं बनी है। आप गौर करना, इस दुनिया में कोई भी चीज अपने लिए नहीं बनी है। अब आप देखिए, ये लाइट रोशनी दे रही है, ठीक है, खुद को दे रही है या दूसरों को? ये लाइट किसको रोशनी दे रही है? जिस कुर्सी पे आप बैठे हैं, ये खुद को कंफर्ट दे रही है दूसरों को? मुझे एक चीज दिखा बता दीजिए जो दुनिया में अपने लिए बनी। पानी किसके लिए बना है? हमारे यहां तो कहावत है कि नदी अपना जल क्या नहीं पीती, पेड़ अपना फल नहीं खाते। ये बिल्डिंग किसके लिए बनी है? अगर किसी बिल्डिंग में 100 साल कोई ना रहे, उसको कौन सा बंगला कहते हैं? कहते हैं ना। अच्छा, आप सोचो, कोई भी चीज, ये माइक्रोफोन किस लिए बना है? कोई बोलेगा तो उसकी आवाज बुलंद करेगा, खुद के लिए नहीं है। व्हाट डज इट टीच अस? कि हम कर देते हैं तो इन द प्रोसेस हमें मिलता है। कुर्सी आराम देती है तो लोग कुर्सी खरीदते हैं। हम भी जिंदगी में, हमारे पूर्वज ये बात जानते थे और उसका नाम था देवता। देवता मीन्स गिवर। उसको समझ में था देने में लेना है। वैसे हम मैनेजमेंट लेक्चर में कहते हैं, प्रेम दो प्रेम लो, रिस्पेक्ट दो रिस्पेक्ट लो, बट दिस अप्लाइज टू ऑल पीपल। हमें जिंदगी का ये असूल बना लेना चाहिए कि देना ही लेना है। क्योंकि हम नंबर टू क्या है, यू कैन नॉट ओन एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, यू कैन ओनली यूज इट। आप इस दुनिया में कोई भी चीज के मालिक नहीं बन सकते, आपको केवल उसके प्रयोग का अधिकार है। ये भी आप नोट करिए, क्योंकि हम मालिक बनने के उसमें रहते हैं। मालिक बनना इज ए पीस ऑफ पेपर कि मैं इस मकान का मालिक हूं। काहे का मालिक हूं? अगर मैं अपना मकान किसी किराएदार को दे दूं जो खतरनाक हो, मैं जिंदगी भर रोता रहता हूं इससे तो मैं ना बनाता अच्छा था। वो यूज भी कर रहा है और मेरे मकान को यूज कर रहा है, मैं उसको खाली नहीं कर, बट ही इज द यूजर। इसलिए जिंदगी में जो कुछ आपके पास है उसको यूज करिए। अगर रखेंगे तो इट में आपका जीवन चले जाएगा, वो पड़ा रहेगा। तो ये भी इम्पोर्टेंट बात है, तो यूज करना है। और लास्ट बात क्या है? कोऑपरेशन। अब आप देखिए, 5 उंगलियां हैं, ठीक है। अगर ये लड़ने लग जाए कि मैं मोटी हूं, मैं छोटी हूं, मैं पतली हूं, तो आपने लड्डू बनाना होगा तो कैसे बनाओगे? इन दिस हर चीज इंटरडिपेंडेंट है, और हर चीज को, और कोऑपरेशन का फायदा क्या है? अगर आप सबके साथ कोऑपरेट कर जाते हैं तो आपका एनी भी आपका फ्रेंड हो जाएगा। हमारे शास्त्रों में लिखा है। टाइम तो नहीं हो गया भाई? हा? कितना टाइम है अभी? हाँ, अच्छा ठीक है, आपकी तरफ से बहुत ठीक है। अच्छा ठीक है, तो आप देखिए, बेसिक बात यह है कि कोऑपरेटिव सिस्टम रियल है और कॉम्पिटिटिव आर्टिफिशियल है। अगर मान लो दो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, दोनों में अच्छा खासा कंपटीशन है, तो बताइए एक ने दूसरे से जीतना हो तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको अपने अंदर पूरा कॉपरेशन जोड़ना पड़ेगा। कॉपरेशन से ही आप कॉम्पीट भी कर सकते हैं। अगर आपस में कॉपरेशन नहीं होगा तो क्या होगा? इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका कोई अपोज करता हो आपका, वो आप ध्यान रखिए कि आपके रास्ते की ऑब्स्टेकल्स, आपके रास्ते की मुसीबतें, आपके विघ्न डालने वाले सब इसीलिए हैं कि हम किसी को रिकॉग्नाइज नहीं करते या किसी को इग्नोर कर देते हैं। हम इसलिए तो छोटा सा ना, नहीं बोलता ना बोले छोड़ो, वो बहुत खतरनाक होता। हर चीज के टोटल कॉपरेशन से दुनिया हम छोटा बड़ा गिनते हैं। एक छोटा सा पुर्जा पूरी मशीन को रोक सकता है, ठीक है? आपको कभी ये नहीं देखना, क्योंकि होलिस्टिक अप्रोच में हर चीज इम्पोर्टेंट है। अगर आपके बॉडी में ही एक इंद्रिय भी कॉपरेट करना बंद कर दे तो क्या होगा? इसलिए कॉपरेशन से ही दुनिया बनती है, और जो चीजें दुनिया में बनी हुई है वो सारी मिक्स होकर ही दुनिया चलती है। तो कॉपरेशन इज द क्लाइमैक्स, और उसके लिए मैं आपको बता देता हूं क्या चाहिए। अब मैं आपको पांच बातें बता रहा हूं जिसके द्वारा आप ये सारी पावर्स को आप रिटेन कर सकते हैं और जेनरेट कर सकते हैं। ये हमारी ट्राइड एंड टेस्टेड है। पहली पावर है सत्यता, ठीक है? सत्यता हमारे लिए क्या है? आजकल लोग क्या करते हैं, उल्टे एग्जांपल देते हैं कि जी आप इसमें सत्य पर कैसे चलोगे। क्या कहते हैं, आपको पता है ना कि जी गाय जा रही है, पीछे बुच्चर जा रहा है, उसने पूछा गाय कहाँ गई, आप सच बोलोगे तो गाय कट जाएगी, ऐसी ऐसी बातें सुनाते हैं। ऐसा नहीं है। सत्य मीन्स असेंस, जो कभी खत्म नहीं होता, और हमारे लिए सत्य है मैं आत्मा, ठीक है? हमने जन्म लिया इस आधार पे लिया, हर एक ने अलग अलग लिया, पिछले संस्कारों पर लिया, जिसको हम अंत मते सोगते कहते हैं। ऑफिस में हम कहते हैं लास्ट पे ड्रॉन, कि पिछली तनख्वाह के हिसाब से अगली सैलरी फिक्स होती है। अच्छा, अब अंत मते सो गते, अब हमने जो पाया उसके ऊपर हमने इम्प्रूव करना है। तो एम ऑफ लाइफ इज ये नहीं कि हम बिल्डिंग बना लिए, हमें अपने सोल के संस्कार को इम्प्रूव करना है। जब भी हम शरीर छोड़ेंगे वो मेरा है, इसलिए लाइफ में संस्कार को इम्प्रूव करना है। उसके लिए पांच बातें आपको बताई गई होंगी कि अगर आप अपने आप को बॉडी मानते हैं तो पांच गड़बड़े पैदा होंगी ही होंगी, जिसको हम कहते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोहंकार, और यही सारी गड़बड़ की जड़ है। आप देखिए, किसी कोर्ट में जाइए, कोर्ट में रजिस्ट्रार से पूछिए जितने मुकदमे हैं उसकी लिस्ट दो, आप पाएंगे काम, क्रोध, लोभ, मोहंकार से आउटसाइड कोई मुकदमा है ही नहीं, ठीक है? आप किसी कंट्री की प्रॉब्लम्स गिन लो, चाहे वो करप्शन हो, चाहे वो लेडीज को छेड़ना हो, उसके पीछे जाएंगे ये पांच ही होंगे। किसी घर में चले जाएंगे, ये इतने हमारे बड़े दुश्मन हैं, इसलिए भगवत गीता में लिखा हुआ है कि तुमने लड़ना है। काम, क्रोध, लोभ नरक के द्वार कहे गए, इसलिए अंत में अर्जुन ने कहा मैं मोह का नाश हो गया। तो ये पांच मेलेडीज पैदा होती हैं अपने को आत्मा ना मान के शरीर मानने से। इसलिए मैं आपको पांच बातें बता रहा हूं। पहली बात, ट्रुथ। ट्रुथ मीन्स मैं आत्मा हूं। आप कहेंगे आत्मा तो मेरे सारे शरीर में है, मैं कैसे मानू कि आत्मा कैसे समझू? अच्छा, छाछ के अंदर मक्खन होता है ना, सारी छाछ में जब आप उसको चरण करते हैं फिर क्या होता है? मक्खन ऊपर आ जाता है। अब उसका एक टुकड़ा वापस मिला के दिखाइए, मिक्स होगा? इसी तरह से जो व्यक्ति प्रैक्टिस करना शुरू कर दे कि मैं आत्मा हूं, अब और कुछ नहीं करना, आप चलिए फिर ये मैं आत्मा इसको चला रहा हूं मैं, तो आपको धीरे धीरे फील हो जाएगा मैं अलग हूं। नंबर टू, पवित्रता। आज तो जहर भी अपवित्र मिलता है, कोई मरने के लिए जहर खाए मरता नहीं, कहते हैं जी इसमें मिलावट है। इसलिए पवित्रता मीन अनअडल्ट्रेटेड, जैसे मैंने आपको बताया प्यार है तो प्योर प्यार है, शांति है तो प्योर शांति अगर बीच में आ गई तो नहीं। तीसरा धैर्यता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वी कैन नॉट हरी अप, हम सोचें ये चीज जल्दी हो जाएगी, होनी नहीं है, होगी अपने टाइम पर। अब सूर्य अपने टाइम पर निकलता है, नेचर में कितना टाइमिंग है, अब धीरे धीरे हम उसको बिगाड़ रहे हैं। तो अपने अंदर पेशेंस रखना बड़ी भारी शक्ति है, नहीं तो आप हरी करेंगे तो बरी और करी हो जाएगा। तीसरा वो बहुत इंपॉर्टेंट, वो क्या है, सत्यता, पवित्रता, धैर्यता, नम्रता। नम्रता, आप किसी से भी नम्र बिहेव करेंगे आपको वो रिएक्ट नहीं करेगा। और चौथा है मधुरता। मैं तो कहूंगा सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट हमारा मधुरता है। जो ही व्यक्ति के अंदर कुछ थोड़ी बहुत अटेनमेंट हुई, उसकी मधुरता गई, तो मधुरता से पता लगता है कि मैंने जिंदगी में मधुर चीज को कॉपरेशन आप पे मिलेगी कि नहीं मिलेगी। कॉपरेशन और नॉन कॉपरेशन में फर्क क्या है, मिठास से आप जानवर को भी बुलाएंगे तो आपके पास बैठ जाएगा। तो मधुरता आप प्रैक्टिस कीजिए कि मैं सुबह से शाम तक जिंदगी में मधुरता का प्रयोग करता हूं, या कभी मैं सच झूठ में आकर, कई बार ऐसा होता है हम कहते हैं हम सच्चे हैं, हमें झूठ बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है आपको पसंद नहीं, लेकिन क्या आप झूठ झूठे से नफरत करेंगे तो उसका झूठ ठीक होगा? नो, हेट द सिन नॉट द सिनर कहा जाता है। इसलिए हमें ये पांच चीजों का ध्यान रखना है, सत्यता मैं आत्मा हूं, प्यूरिटी मुझे अपनी आत्मा की ओरिजिनल क्वालिटी को रिटेन करना है, धैर्यता इम्पेशेंट नहीं होना है, नम्रता और मधुरता, ये पांच चीजें आपकी शक्तियों को बढ़ाएंगी। और सबसे अच्छा है ये जो मेडिटेशन जहां सिखाया जाता है, दुनिया में भी मेडिटेशन सिखाते हैं, उसमें क्या होता है आप अपनी ताकत से अपने को कॉन्सेंट्रेट करते हैं, यहां जो मेडिटेशन सिखाते हैं इतना ही फर्क है, यहां गॉड से पावर लेते हैं। क्योंकि अपनी पावर से अगर मैं रख सकता होता तो मैं नीचे क्यों आता, अब मैं आ गया हूं, मुझे समझ भी आ रहा है ये गलत है, आई कैन नॉट इम्प्लीमेंट इट, जब तक ये शक्ति नहीं आएगी। इसलिए और क्लासिफाई करने के लिए आप जितनी मर्जी पावर्स कह दें, पावर्स लीड टू फ्रूट। आप देखेंगे देवताओं की जो क्वालिफिकेशन है उसमें गुण है, पावर शुड लीड टू गुण। अगर पावर पावर ही रह गई, मान लो किसी के घर में इलेक्ट्रिसिटी का बहुत बड़ा पावर मीटर है, अप्लायंसेस है ही नहीं, तो क्या करेगा, बिजली लगा के थोड़ी काम चलेगा, या सिर्फ अप्लायंसेस और बिजली नहीं है तो भी काम नहीं चलेगा। इसलिए हमें पावर्स को गुणों में परिवर्तित करना है। तो जो हमारे गुण है वही जो मैंने बताया, ये गुण ही जाहिर करेंगे कि हम अपनी पावर्स को ठीक तरह प्रयोग कर रहे हैं, तो व्यवहार में आएंगे तो हमारे अंदर गुण आ जाएंगे।